लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी पीड़ितों को जीवन का रास्ता मिले तथा वे यीशु के पवित्रतम हृदय के स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा न करें तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो, क्योंकि वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 127वें भजन के प्रथम दो पद। इन्हीं पदों की व्याख्या से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 127वें भजन को सुलेमान का गीत कहा गया है, इसलिए कि इस गीत में प्रभु भक्त का जिक्र हुआ है और बाइबल आचार्यों के अनुसार ईसा पूर्व 950वें वर्ष में रचे गए उक्त गीत में सुलेमान का ही संदर्भ दिया गया है। उस प्रभु भक्त का इसमें जिक्र मिलता है जिसने प्रतिपल ईश्वर में अपने विश्वास की अभिव्यक्ति की और विवेक तथा प्रज्ञा का वरदान प्राप्त किया। 127वें भजन के प्रथम दो पदों में घर की बात की गई है। वह घर घर नहीं हो सकता जिसकी रचना में प्रभु का हाथ न लगा हो अथवा जिसके निर्माण कार्य पर प्रभु की आशीष न हो। वस्तुतः श्रोताओं, 127वें भजन में घर और नगर जैसे शब्दों का अर्थ केवल ईंटों और सीमेंट से निर्मित मकान या भवन से नहीं है, अपितु इसका अर्थ है संतति से। घर परिवार वही होता है जहां बच्चे होते हैं। मिस्त्री कितनी भी मेहनत कर लें और पहरेदार कितना ही पहरा कर उसे संभाले, पर वह व्यर्थ ही होगा। सार यह कि मनुष्य के प्रत्येक कर्म को सफल होने के लिए उस पर प्रभु की आशीष होना अनिवार्य है। भजनकार कहता है, पुत्र प्रभु द्वारा दी गई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषक है। पुत्र प्रभु ईश्वर द्वारा मानव को मिला वरदान होता है और संतति प्रभु द्वारा दिया गया पुरस्कार, इसलिए कि प्रभु ईश्वर के बिना, उनकी आशीष के बगैर हमारा घर, हमारा परिवार और घर के बच्चे केवल व्यक्तियों का झुंड मात्र होगा। वह यथार्थ घर नहीं हो सकता। इसलिए घर के पुत्र को प्रभु द्वारा प्रदत्त वरदान और प्रभु द्वारा दिया गया पुरस्कार माना जाए। पुत्र और संतति प्रभु द्वारा दी गई विरासत है जिसे हम संजोए रखें तथा जिसके लिए प्रतिपल धन्यवाद ज्ञापित किया करें।
तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु।
और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 127वें भजन के चौथे और पांचवें पदों पर दृष्टिपात करें। ये पद इस प्रकार हैं: तरुणाई के पुत्र योद्धा के हाथों में बाणों जैसे हैं, धन्य है वह मनुष्य जिसने उनसे अपना तरकश भर लिया है। जब उसे नगर के फाटकों पर शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा तो वह लज्जित नहीं होगा। श्रोताओ, जैसा कि हमने पहले कहा, जब तक प्रभु स्वयं घर का निर्माण नहीं करते, जब तक प्रभु स्वयं उस घर को संतान से परिपूरित नहीं करते, तब तक वह घर घर नहीं होता, वह व्यक्तियों का झुंड मात्र होता है। ऐसा झुंड जिसमें निरंतर कलह बनी रहती है, वह तनाव से घिरा होता है, उसमें अनवरत संघर्ष जारी रहा करता है। भजनकार का परामर्श है कि हम अपनी संतानों को प्रभु द्वारा प्रदत्त वरदान माने। वह प्रभु ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल विरासत है, जिसे हर पल संजोए रखें, इसलिए कि घर के बच्चे ही माता पिता की ढाल बनते हैं। बच्चे ही भजनकार के शब्दों में योद्धा के हाथों में बाणों जैसे हैं। माता पिता और बच्चों का परिवार ईश्वर की आशीष और अनुकंपा के बल पर हर बुराई की शक्ति से लड़ने में सक्षम बनता है। इसीलिए भजनकार कहता है, धन्य है वह मनुष्य जिसने उनसे अपना तरकश भर लिया है। जब उसे नगर के फाटकों पर शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा तो वह लज्जित नहीं होगा। श्रोताओ, सुख शांति से भरा पूरा परिवार ही मानव जाति के लिए ईश्वर की इच्छा है। राजा सुलेमान ने जेरूसलम के विशाल काय और वैभवपूर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था तथा उसे नगर की शान के रूप में प्रतिष्ठापित किया था। अब बाबुल के निष्कासन से लौटी ईश प्रजा जब दूसरे मंदिर के निर्माण में लगी थी, तब शत्रु फिर मुंह उठाकर उनके समक्ष खड़े हो गए थे। वे फिर से नवीन मंदिर की ओर बढ़ते तीर्थयात्रियों के साथ बहस करने लगे थे। उन्हें वे फाटकों पर ही रोकना चाहते थे। इसी के संदर्भ में भजनकार कहता है कि पुत्र योद्धा के हाथों में बाणों जैसे हैं। वे अपनी बाणों से एक बार फिर बुराई की शक्ति को रोक लेंगे तथा न्याय और शांति की विजय होगी। प्रभु पर भरोसा रखने वालों के पुत्र फाटकों पर शत्रुओं का सामना करेंगे तथा उन्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु की कृपा से वे विजयी होंगे। श्रोताओ, आज हम भी कई शत्रुओं से घिरे हैं। आज भी ईश्वर की आशीष की तौहीन करते हुए कितने लोग ऐसे हैं जो विवाह, घर और परिवार के मर्म को ही भुला बैठे हैं। विवाह एक पवित्र संस्कार है, इस बात को उन्होंने अपनी सुविधा के लिए भुला दिया है। विवाह का बहिष्कार कर यौन संबंध को वे मात्र भोग विलास का साधन मान बैठे हैं। घर के बच्चों को वे एक बाधा मानते हैं तथा उनसे छुटकारा पाने के रास्ते की खोज में लगे रहते हैं। बच्चों की बातों से उन्हें चिढ़ आती है। बच्चों को डे केयर सेंटर्स अथवा किंडरगार्टन में भर्ती कराकर सोचते हैं कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। हालांकि जकरिया के ग्रंथ के 8वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, विश्व मंडल का प्रभु कहता है, जेरूसलम नगर के चौक खेलते हुए लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे और ऐसा भरा पूरा समुदाय कभी भी लज्जित नहीं होगा। सार यह कि वह घर वह परिवार व्यर्थ है जो तनाव से भरा होता है, जिसमें केवल ईर्ष्या, भय, लोभ, लालच और स्वार्थ भरा होता है, जबकि वे लोग जो प्रभु के नियमों के अनुसार अपने घर और परिवार का निर्माण करते हैं, अपने बच्चों की उचित देखरेख करते हैं, ऐसे ही लोग शांति निर्माण में योगदान दे सकते हैं। 127वें भजन की यथार्थ शिक्षा यही है कि कलीसिया और समुदाय दोनों का स्वास्थ्य परिवार और उचित ढंग से जीने वाले परिवार पर निर्भर रहा करता है।
तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही ते प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु। तू है मसीह प्यार का, तेरा प्यार मुझ में हो, तू प्रभु तेरी सच्चाई मुझ में हो। तू है मसीह प्यार का, तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु तेरी सच्चाई मुझ में हो।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने नाविकों एवं मछुआरों को उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है और कोरोना वायरस महामारी के समय में उनकी कठिनाइयों की याद की है। समुद्र की प्रेरिताई में लगे लोगों को बुधवार को प्रेषित एक वीडियो संदेश में संत पापा ने स्वीकार किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण नाविकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने जोखिम के बावजूद मानवता को सेवा देने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया है। संत पापा ने कहा है कि समुद्र के व्यक्ति और मछुआरों के रूप में आपका काम अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यह हमारे वृहद मानव परिवार को भोजन एवं अन्य प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संत पापा ने कहा है कि कोरोना वायरस ने समुद्री लोगों को बहुत अधिक परिवर्तन लाने और कई प्रकार के त्याग करने के लिए मजबूर किया है। उन्हें लंबे समय तक जहाजों में रहकर परिवारों, दोस्तों और अपने देश से अलग एवं संक्रमण के भय के साथ जीना पड़ा, जो उनके लिए बहुत भारी था। संयुक्त राष्ट्र श्रमिक एजेंसी के अनुसार करीब 150,000 से 2,00,000 की संख्या में नाविक समुद्रों में फंसे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने हाल में कहा था कि तालाबंदी के उपायों ने स्वस्थ समुद्री लोगों को जहाजों से उतरने से रोक दिया है। कई लोगों ने महीनों पहले अपनी यात्रा समाप्त की है, किंतु उन्हें मजबूर होकर जहाजों में रहना पड़ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के मामले और शारीरिक थकावट कई लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। अपने संदेश में संत पापा ने पीड़ित नाविकों को सीधे संबोधित करते हुए कहा है, यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं और आप नहीं भुलाए गए हैं। समुद्र में आपका काम बहुधा आपको दूसरों से अलग रखता है, किंतु आप मेरी सोच एवं प्रार्थनाओं तथा समुद्र मिशन में नियुक्त पुरोहितों और स्टेला मारिस के द्वारा मेरे करीब हैं। संत पापा ने उन्हें स्मरण दिलाया कि यीशु के पहले शिष्य भी मछुआरे थे। संत पापा ने हरेक नाविक को आशा, सांत्वना और सहानुभूति का संदेश दिया है और उनके लिए प्रार्थना की है कि वे सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर सकें। संत प्रकरण परिषद के लिए गठित परमधम पीठीय धम्म संघ के अध्यक्ष कार्डिनल अंजेलो बेजू ने लंदन में जन्मे किशोर कार्लो अकुतिस की धन्य घोषणा के स्थगन के बारे बतलाया है और उनके बारे कहा है कि वे इंटरनेट पर काम करने वाले तथा यीशु एवं कलीसिया से प्रेम करने में अत्यंत जोशीले थे। कार्डिनल बेजू ने वैटिकन न्यूज को बतलाया कि कई लोग यूखरिस्ट के प्रेम से कंप्यूटर प्रतिभाशाली कार्लो अकुतिस की धन्य घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, किंतु कोरोना वायरस महामारी के कारण धन्य घोषणा की तिथि अक्टूबर को निश्चित की गई है। धन्य घोषणा की तिथि निश्चित कर दी गई थी, किंतु असीसी के धर्मदर्शकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद इसे 10 अक्टूबर को रखा गया है। उन्होंने कहा, उम्मीद की जा रही है कि उस समय में अधिक लोग समारोह में भाग ले पाएंगे और दूसरी बात यह है कि यह उनकी पुण्यतिथि के ठीक 2 दिन पहले होगा, क्योंकि उनका निधन 12 अक्टूबर 2006 को हुआ था। कार्लो अकुतिस का जन्म 3 मई 1991 को हुआ था। बचपन में ही वे लंदन से अपने माता पिता के साथ मिलान आ गए थे। वहीं 15 साल की उम्र में वे बीमार हुए थे और उनका निधन हो गया था। कार्लो अकुतिस की धन्य घोषणा उनकी मध्यस्थता द्वारा ब्राजील के एक लड़के की बीमारी से चंगाई के बाद इटली के असीसी में 10 अक्टूबर को होगी। और आज के ट्वीट संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने कहा, प्रभु कठोर अथवा विचारधारा पूर्ण हृदय में प्रवेश नहीं करते, प्रभु ऐसे हृदय में प्रवेश करते हैं जो उनके समान हैं, खुले और करुणावान। वैटिकन के कई विभागों ने मिलकर एक दस्तावेज प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है आम घर की देखभाल पर यात्रा। वैटिकन के इस दस्तावेज को बृहस्पतिवार को प्रकाशित किया गया जो कैथोलिकों एवं सभी ख्रिस्तियों को दिशा निर्देश देता है कि ईश्वर की सृष्टि के साथ किस तरह का संबंध स्थापित किया जाए। दस्तावेज को संत पापा फ्रांसिस के प्रेरित विषय पत्र लाउदातो सी की 5वीं सालगिरह पर प्रकाशित किया गया है। दस्तावेज को समग्र पारिस्थितिकी पर परमधम पीठ के विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किया गया है, जिसको अभिन्न पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने और कार्यान्वित करने के तरीकों का मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया है। दस्तावेज को कोविड-19 महामारी के पहले ही लिखा गया था और इसमें लाउदातो सी के संदेश कि सब कुछ जुड़ा हुआ है पर प्रमुखता से प्रकाश डाला गया है। संत पापा फ्रांसिस ने 106वें विश्व अप्रवासी एवं शरणार्थी दिवस के लिए अपने संदेश को प्रकाशित किया। विश्व अप्रवासी एवं शरणार्थी दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अप्रवासी एवं शरणार्थी दिवस के लिए इस साल संत पापा फ्रांसिस के संदेश की विषय वस्तु है यीशु ख्रिस्त के समान पलायन करने के लिए मजबूर। संत पापा ने संदेश में कहा है कि भय और पूर्वाग्रह हमें दूसरों से दूरी बनाकर रखने और बहुधा यीशु ख्रिस्त के निकट आने एवं प्रेम से उनकी सेवा करने से रोक देता है। विश्व भर में कोरोना वायरस से संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इस समय करीब 83,51,428 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय की रिपोर्ट अनुसार करीब 40,76,245 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि लगभग 4,49,229 लोगों की मौत हो गई है। वहां अब तक 9,55,377 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 76,510 लोगों की मौत हो चुकी है। इस रिकॉर्ड के आधार पर कोरोना वायरस से ब्राजील अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत कोरोना वायरस से संक्रमण में रूस के बाद चौथे स्थान पर आ गया है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 3,66,946 है और 12,237 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,94,325 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 का पहला मामला भारत में 30 जनवरी 2020 को रिपोर्ट किया गया था। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।